पाठ 29 अध्याय 30 और 31। पिछले पाठ में हमने याकूब को देखा, जिसे अभी तक इसराइल नहीं कहा गया था। दरअसल उसकी दो पत्नियां थीं, बहनें लिया और राहेल, क्योंकि उसके धूर्त ससुर लाबान ने उसे उसी तरह धोखा दिया था जैसे याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया था। क्या यह जीवन में आश्चर्य की बात नहीं है कि यहोवा अक्सर हमें अपना पाप दिखाता है और दूसरों पर इसका विनाशकारी प्रभाव दिखाता है, किसी को हमारे साथ वैसा ही करने की अनुमति देता है जैसा हमने दूसरे के साथ किया है। याकूब ने अपने पिता इसहाक पर पुरानी चाल चली, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे और उसके भाई एसाव को नहीं सबसे अच्छा आशीष मिले। और यह धोखा उसके पिता के लिए जितना परेशान करने वाला था, इसने एसाव को आने वाले कई वर्षों के लिए शर्मिंदा कर दिया। अब लाबान के लिए 7 वर्षों तक काम करने के बाद, ताकि वह राहेल को पत्नी बना सके, विवाह समारोह के दौरान लाबान याकूब पर पुराना स्विचेरू खींचता है, जो जागता है और पाता है कि यह लिया है, न कि राहेल जो वह है शादी कर ली थी। अध्याय 29 के अंत के करीब याकूब पहली बार पिता बना। मैं आपको याद दिला दूं कि वह अब 80 वर्ष के हो चुके थे, और अध्याय 29 के अंतिम कई पदों का केंद्र बिंदु लिया द्वारा याकूब के लिए उन पुत्रों को प्रदान करने के बारे में है, पहले रूबेन, फिर शिमोन, फिर लेवी और अंत में यहूदा। अध्याय हमें यह बताकर समाप्त होता है कि किसी अज्ञात कारण से लिया का गर्भ सूख जाता है। अध्याय 30 के पहले कई पद गियर बदलने वाले हैं और हमें राहेल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और लिया सादी लेकिन धर्मनिष्ठ बहन और राहेल सुंदर लेकिन सांसारिक बहन के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। याकूब अभी भी मेसोपोटामिया के हारान में है। यह दिलचस्प है कि हम पाते हैं कि जैसे अब्राहम का जन्म वादा किए गए देश के बाहर किसी भूमि में हुआ था, वैसे ही याकूब के बच्चे भी होंगे जिन्हें भविष्य में इसराइल की जनजातियां कहा जाएगा। प्रारंभिक विदेशियों जैसा जीवन।
उत्पत्ति 30 पूरा पढ़ें। राहेल सुंदरता से संपन्न, एक ऐसा गुण जिसके लिए वह कोई श्रेय नहीं ले सकती थी। जिस पत्नी ने याकूब का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था, अब उसे अपनी बहन के एक गुण से ईर्ष्या हो रही है, जिसने उस एक गुण के अलावा लिया को याकूब के जीवन में बाद का विचार बना दिया, और वह है बच्चे पैदा करने की क्षमता। एक छोटे क्षुद्र बच्चे की तरह राहेल वास्तव में अपने बांझपन के लिए याकूब को दोषी ठहराती है, और याकूब उसे दृढ़ता से यह कहकर जवाब देता है कि ऐसा निश्चित रूप से प्रतीत होगा कि वह नहीं है जहां समस्या है। इसलिए अपनी दादी सारा के जीवन से एक पन्ना लेते हुए वह अपने स्थान पर बच्चे पैदा करने के लिए याकूब को अपनी निजी नौकरानी देकर कार्य में लग जाती है। हम यह संदर्भ देखते हैं। यहां जैसा कि हमने पहले भी कुछ बार देखा है, नौकर लड़की को उसकी मालकिन द्वारा पत्नी के रूप में दिया जाता है। बस याद रखें कि वास्तव में यह नौकर लड़की वही है जिसे अंग्रेजी में हम रखेल कहते हैं। याकूब की रखेल बनने से उसकी स्थिति वास्तव में नौकरानी से ऊपर उठ गई थी, लेकिन वह दर्जा लिया या राहेल तक नहीं पहुंच सका, जो दोनों व्यवस्था की पत्नियां थीं, सभी अधिकारों और सम्मानों और विवाह समारोहों के साथ, जो व्यवस्था की पत्नी बनाम रखेल पत्नी की स्थिति के साथ थे।
याकूब और लिया और राहेल की यह कहानी मुझे कुछ इंगित करने की अनुमति देती है यहां, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने निश्चित रूप से दो पत्नियां लेने के लिए याकूब की पसंद को मान्य नहीं किया। उसने इसहाक की तुलना में अधिक नहीं किया, न ही अब्राहम। अक्सर हम यह कहना पसंद करते हैं, ठीक है, यह बाइबल में है, इसलिए परमेश्वर को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं तो बहुत बार पवित्र ग्रंथ केवल ऐतिहासिक सत्य बताते हैं, हमें बताते हैं कि क्या कहा गया था या क्या हुआ था, और फिर उस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि ये बयान बस अपने आप में कायम है। ईश्वर ने उत्पत्ति के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि विवाह 2 से 1 शरीर का निर्माण है, 3, 4, 5, 6 नहीं, या सुलेमान की तरह बहुत बाद में 1000। संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करें ताकि हम अलग हो सकें। यही कारण है कि ऐतिहासिक तथ्यों के सरल कथनों से परमेश्वर की आज्ञाओं, सिद्धांतों और विशेषताओं को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल पुरुषों और महिलाओं के कथनों से भरी है,
और उनमें से कई कथन सरासर झूठ हैं या आत्म प्रशंसा करने वाले हैं या अत्यधिक अतिरंजित हैं या इच्छाधारी सोच हैं या व्यक्तिगत तर्क संगतता है, व्यवहार या व्यापक रूप से प्रचलित अंधविश्वासों की अभिव्यक्तियां। याकूब के मामले में उसने अपने भाई एसाव और अपने पिता को धोखा दिया, यह सही नहीं था लेकिन उसने ऐसा किया और बाइबल बस इसकी रिपोर्ट करती है। याकूब ने पत्नी लिया को अपनी मर्जी से नहीं चुना था, जाहिर तौर पर परमेश्वर ने उसके लिए उसे चुना था। उसने उसे राहेल को चुना था जो उसकी शारीरिक और आवेग पूर्ण पुरुष इच्छाओं को सबसे अधिक संतुष्ट करती थी। यह सही नहीं था लेकिन उसने ऐसा किया और बाइबल बस इसकी रिपोर्ट करती है। फिर उसने दो पत्नियों से शादी कर ली, यह सही नहीं था लेकिन उसने ऐसा किया, पवित्र शास्त्र हमें इसके बारे में बताता है इत्यादि। हमें यह कभी नहीं मानना चाहिए कि चूंकि बाइबल प्रत्येक कथन या कार्य पर टिप्पणी नहीं करती है कि यह सही था या गलत, अच्छा था या बुरा, इसलिए जिन लोगों पर टिप्पणी नहीं की गई है उन्हें कम से कम कुछ हद तक परमेश्वर को स्वीकार्य होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में तोरह है और हमने इसे पढ़ा है और इसका अध्ययन किया है तो हम जान लेंगे कि ईश्वर की दृष्टि में क्या सही और क्या गलत था, और हमसे यही करने की अपेक्षा की जाती है। तथ्य यह है कि हमें बाइबल के ये पात्र कौन थे, खामियां और सब कुछ के बारे में पूर्ण अडिग दृष्टिकोण दिया गया है। यह ईश्वर के पूर्ण अपरिवर्तनीय समझौता न करने वाले सत्य को प्रभावित नहीं करता है। हमारी तरह यीशु को छोड़कर बाइबल का हर पात्र अपूर्ण था और उसने ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। चलिए आगे चलते हैं।
राहेल ने बिल्हा को याकूब को दे दिया कि वह उसके स्थान पर बच्चा पैदा करे। आयत 3 कहती है कि राहेल ने बिल्हा को दिया ताकि वह मेरे घुटनों पर बैठ जाए और उसके माध्यम से मैं भी बच्चे पैदा कर सकूं। वह वाक्यांश मेरे घुटनों पर बैठ सकता है एक इब्रानी मुहावरा है जो लंबे समय से चली आ रही मध्य पूर्वी प्रथा को प्रतिबिंबित करता है। प्रथा यह है कि किसी बच्चे को औपचारिक रूप से अपने घुटनों या गोद में बिठाकर वह व्यक्ति यह दर्शाता है कि वे उस बच्चे पर अपना दावा कर रहे हैं। यह एक व्यवस्था की दावा है और यह उन कारणों से किया जाता है जैसा कि हम यहां देखते हैं, जहां एक नौकर को नौकर के मालिक के लिए सरोगेट मां के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या जब किसी बच्चे को व्यवस्था के रूप से गोद लिया जा रहा हो। तो हमें यह समझना होगा कि जिस तरह राहेल को उस बच्चे पर दावा करने का पूरा अधिकार था जिसे उसका नौकर बिल्हा जन्म देगा, उसी तरह राहेल को भी उसी तरह पूरा अधिकार है कि वह अपने नौकर द्वारा पैदा किए गए बच्चे को स्वीकार न करे। वह अपने नौकर द्वारा पैदा किए गए बच्चे को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही वह बच्चा उसके अपने पति के बीज से आया हो। तो हम सब जानते हैं, और यह संभवतः मामला है, बिला ने संभवतः रास्ते में कुछ लड़कियों को जन्म दिया और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राहेल ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। यह बिला के लिए बहुत शर्म की बात होती अगर उसे कुछ बच्चे पैदा करने और अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जाती। और इस प्रकार के नौकर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, प्यार करती थी, देखभाल करती थी और परिवार का हिस्सा मानती थी, इसलिए यह अकल्पनीय है कि उसे अपने कुछ बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने की अनुमति नहीं दी गई होगी। बेशक उत्पत्ति में इस कथा का उद्देश्य यह दिखाना है कि इज़राइल की जनजातियां कहां से आईं, और इसलिए एकमात्र प्रासंगिक जानकारी उन बेटों के बारे में होगी जो पैदा हुए थे, न कि बेटियों के बारे में। हालांकि हम पाएंगे आने वाले अध्यायों में एक उल्लेखनीय अपवाद। राहेल का नौकर बिल्हा, जो अब याकूब की रखेल है, उससे राहेल के नाम पर एक पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र का नाम दान है जिसका अर्थ है न्याय करना। इसके बाद बहुत समय नहीं हुआ वह उसे एक और बेटा देती है, नप्ताली, जिसका अर्थ है कुश्ती या प्रतियोगिता। राहेल की सफलता और उसके स्पष्ट पुरस्कारों को देखकर लिया, जिसके बारे में हमें पिछले अध्याय के अंत में बताया गया है कि उसने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है, अब खुद को इन कमजोर धारणाओं से संक्रमित होने की अनुमति देती है। वह अपनी दासी जिल्पा को याकूब को देती है कि वह उसके स्थान पर बच्चे पैदा करे। याकूब
उसकी पापी कमजोरियां इतनी आसानी से स्पष्ट हो जाती हैं कि वह सही काम भी नहीं कर पाता है और लिया की नौकरानी को अपनी दूसरी रखेल के रूप में स्वीकार कर लेता है। पहले गाद सौभाग्य, फिर आशेर खुश जिल्पा से पैदा हुए हैं, उन पर लिया ने अपना होने का दावा किया है। सच तो यह है कि यहां दोनों बहनों के बीच थोड़ी लड़ाई चल रही थी। वे प्रत्येक अपने पति की पसंदीदा बनना चाहती थीं और उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि वे उसे अत्यधिक मूल्यवान पुत्र देकर यह पक्षपात अर्जित करेंगी। तो थोड़ी देर बाद ये प्रतिस्पर्धी और अंधविश्वासी बहनें एक सौदा करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रूबेन लिया का पुत्र दूदाफल इकट्ठा करने के लिए मैदान में जाता है। मैंड्रेक्स को कामोत्तेजक माना जाता है। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि रूबेन को अच्छी तरह से पता था कि याकूब उसके पिता अपनी दो वैध पत्नियों लिया और राहेल के साथ वैकल्पिक रूप से सोएंगे, लेकिन लिया अभी भी राहेल के लिए दूसरी भूमिका निभा रही थी और निश्चित रूप से उस खुले पक्षपात ने रूबेन को परेशान किया, क्योंकि इससे उसकी मां को परेशानी हुई थी। लाया, सेक्स सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, खासकर झुंड और झुंड के आसपास पले बढ़े बच्चों के लिए। रूबेन सिर्फ अपनी मां की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिसने निस्संदेह स्थिति की अनुचितता के बारे में अपने बेटे से शिकायत की है, और वह सोचता है कि शायद मैंड्रेक उसकी मां की नाखुशी का जवाब है।
इब्रानी में मैंड्रेक वचन का अनुवाद दुदैम है, और जबकि कई लोक कथाएं मैंड्रेक्स की कामोत्तेजक शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, उनका व्यापक रूप से वास्तविक और उपयोगी दवाओं के लिए उपयोग किया जाता था। मैंड्रेक एक छोटा चेरी टमाटर जैसा फल देता है जो गेहूं की फसल के लगभग उसी समय पकता है। इसमें बहुत तेज खुशबू होती है। प्रेम की ग्रीक देवी एफ्रोडाइट का उपनाम मैंड्रेक की महिला था। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि इब्रानी एक मूल वचन आधारित भाषा है, हम पाते हैं कि मैंड्रेक के लिए वचन दुदैम इब्रानी वचन डोड़ाई की एक शाखा है, जिसका अर्थ है प्यार। तो उदाहरण के लिए सोलोमन के गीत में हम उन दो वचनों पर एक नाटक देखेंगे जिसमें कहा गया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दुदाई प्यार दूंगा, जैसे दुदाइम दूदाफल अपनी सुगंध छोड़ते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखने वाले हैं, जबकि शास्त्र सीधे तौर पर दूदाफल के उपयोग के बारे में नहीं कहते हैं, लिया और राहेल के मन में जो उद्देश्य थे वे सिर्फ हास्यास्पद अंधविश्वास हैं, यह प्रदर्शित करने का एक मुद्दा बनता है जब हम देखते हैं कि जिसने दूदाफल त्याग दिया लिया, वह जो तीन और बच्चे पैदा करती है, जबकि राहेल एक जो दूदाफलों के साथ नष्ट हो जाता है, वह कुछ और वर्षों तक बंजर बना रहता है। तो राहेल अपने भतीजे रूबेन द्वारा एकत्र किए गए मैंड्रेक्स को देखकर लिया की भावनाओं के बारे में कभी भी विचार नहीं करते हुए कहती है, अरे आप उनमें से कुछ मुझे क्यों नहीं देते? लिया कहती है, हाँ ठीक है, तो तुम मेरे पति के साथ सो सकती हो। ओह क्या करें। खैर उन दोनों के बीच समझदारी के लिए क्या हुआ होगा, लिया ने राहेल को मैंड्रेक्स के बदले में राहेल को इस बात पर सहमत कर दिया कि यह लिया ही होगी जो उस रात याकूब के साथ सोएगी। वाह, आर रेटेड के बारे में बात करें। वैसे भी लिया गर्भवती हो जाती है और फिर इस साकार को जन्म देती है, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर लाता है इनाम। पद 18 हमें सूचित करता है कि इस भ्रमित महिला ने वास्तव में फैसला किया कि उसके लिए परमेश्वर का इनाम था, जिसने याकूब को एक रखेल के रूप में अपनी नौकरानी दी थी। एक बेकार परिवार के बारे में बात करें, केवल आपको बताने से मुझे बेहतर महसूस होता है। कहानी। वैसे भी लिया फिर याकूब को एक और बेटा जबुलून देती है, जिसका अर्थ है निवास। निवास क्यों? क्योंकि लिया को हालांकि यकीन था कि चूंकि उसके बच्चे पैदा करने का स्कोर कार्ड उसकी बहन राहेल से कहीं अधिक था, इसलिए याकूब राहेल को प्राथमिकता देते हुए या शायद राहेल को छोड़कर उसके साथ रहेगा। इसके बाद हमारे पास बाइबिल के नियम का वह अपवाद है जो आमतौर पर केवल पैदा हुए बेटों को ही रिकॉर्ड करता है। लिया से एक लड़की दीना का जन्म हुआ। राहेल की बारी आती है और वह यूसुफ को जन्म देती है, जिसका नाम मूल इब्रानी में एक बहुत ही दिलचस्प वचन है, जैसा कि इन पदों में यहां इस्तेमाल किया गया है। पद 23 को देखें। राहेल के बारे में बोलते हुए यह कहता है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। राहेल ने घोषणा की कि परमेश्वर ने मेरा अपमान दूर कर लिया है। ले जाए गए इब्रानी वचन का अनुवाद आसफ है। अगली पद 24 में राहेल कहती है कि वह उसका नाम यूसुफ रखेगी, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए एक और पुत्र जो
रा है। योसेफ का अर्थ है जोड़ना, आसफ हटाओ, योसेर जो रो। ये यूसुफ के लिए एक भविष्य सूचक नाम था, क्योंकि कुछ वर्षों में यूसुफ को उसके पिता से छीन लिया जाएगा और फिर कई वर्षों के बाद उसे वापस जो रा जाएगा। यहां यह ध्यान रखना दिलचस्प है, जैसा कि मैंने इस पाठ की शुरुआत में उल्लेख किया था कि याकूब के एक को छोड़कर सभी बेटे तब पैदा होंगे जब वह लाबान की दास्ता में था और मेसोपोटामिया के हारान में रह रहा था। तो जैसे इज़राइल के पुत्र वादा किए गए देश के बाहर पैदा होंगे, वैसे ही उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और वादा किए गए देश के बाहर मिस्र में एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 14 वर्ष यानी उसकी दोनों पत्नियों के लिए 7-7 वर्ष बीत चुके हैं और याकूब अपनी बंधन दास्ता को लाबान द्वारा पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन हमेशा चालाक लालची लाबान याकूब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे याकूब की उपस्थिति से बहुत लाभ हुआ था। लाबान एक मूर्ति पूजक अध्यात्मवादी है, यानी वह आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास करता है। उनका मानना है कि स्पिरिटा दुनिया में कई ईश्वर हैं और उनका मानना है कि याकूब का परमेश्वर इन ईश्वरों में से एक है। तो पद 27 में लाबान ने याकूब के ईश्वर का आह्वान किया और कहा कि उसने आध्यात्मिक रूप से दिव्य, आध्यात्मिक दुनिया की दिव्य चीजें मनोविज्ञान और माध्यमों से की हैं, कि यह याकूब का ईश्वर है जिसने झुंडों और झुंडों में सभी महान वृद्धि का कारण बना दिया है, का जो निश्चित रूप से सच है। लेकिन लाबान सिर्फ याकूब को रुकने के लिए ऐसा कह रहा है।
तो यहां हम धोखे के दो स्वामी याकूब और लाबान को एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए देखते हैं। जाहिर तौर पर अज्ञानी लाबान के खिलाफ अपने लाभ के लिए याकूब उस चीज को नियोजित करता है जिसे वह सबसे अच्छी तरह से जानता है, भेड़ बकरियों और झुंडों की देखभाल करना। वह कहता है कि यदि उसे सभी चित्तीदार और चित्तीदार भेड़ रे और बकरियां दे दी जाए तो वह कुछ समय और रुकेगा। चतुर याकूब ने लाबान को इस बात के लिए मना लिया कि इससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि कौन से जानवर उसके हैं और कौन से लाबान के हैं, और दोनों झुंडों की वृद्धि की पहचान करना भी आसान हो जाता है। यथार्थ में याकूब जानता है कि वह अपने झुंड को और अधिक बढ़ा सकता है और लाबान यह कहकर उसे कभी धोखा नहीं दे पाएगा कि उनमें से कुछ जानवर उसके हैं, क्योंकि उनका रंग उन्हें अलग करता है। उन लकड़ियों के बारे में सौदा जो जानवरों को प्रजनन और धब्बेदार छीने हुए पैदा करने के लिए प्रतीत होता है, और धब्बेदार संतानों को बाइबल के विद्वानों ने सामान्य अंधविश्वास से लेकर मेंडेलियन आनुवंशिक प्रजनन को बढ़ावा देने के प्राचीन तरीके तक कुछ भी कहा है। अब जितना दिखता है उससे कहीं अधिक यहां काम पर है। लेकिन ये सूक्ष्मताएं इब्रानी से अन्य भाषाओं में अनुवाद द्वारा स्वतः ही छिप जाती हैं। ध्यान दें कि इन अनुच्छेदों में जोर रंग पर है, विशेष रूप से जानवरों का रंग यह निर्धारित करेगा कि जानवर याकूब का है या लाबान का। और सार यह है कि सभी सफेद भेड़े
जरेनिया और सभी काली बकरियां लाबान को जाती है, जबकि जिन बकरियों के काले बालों में सफेद धब्बे या धारियां थीं और जिन सफेद भेड़ों के ऊन में कुछ काले धब्बे थे वे याकूब के पास जाएं। यह समझना चाहिए कि भेड़े
आमतौर पर शुद्ध सफेद होती थी और बकरी आमतौर पर गहरे भूरे या काले रंग की होती थी। निहितार्थ यह है कि लाबान को सफेद जानवर बहुत पसंद थे, भेर। क्यों? क्योंकि भैरों के लिए सफेद रंग आदर्श था और भैरों पर आमतौर पर गहरे रंग के कोई धब्बे नहीं होते थे। बकरियों के लिए यह विपरीत था, वे हमेशा काले रंग की होती थी और उन पर कभी कभार ही सफेद धब्बे होते थे। इसलिए यदि यह सब सफेद था तो मुझे लाबान जाना था, और व्यावहारिक रूप से सभी भेरें
सफेद थीं। इब्रानी में सफेद वचन लाबान है, उसे ले लो। याकूब के ससुर के नाम का अर्थ है सफेद, और सभी सफेद जानवरों को मिस्टर व्हाइट के पास जाना था। लाबान की अपेक्षा यह थी कि पूरी तरह सफेद पैदा होने वाली भैरों की संख्या उन भैरों की संख्या से काफी अधिक होगी जिनके शरीर पर काले धब्बे थे। यही बात गहरे रंग की बकरियों की संख्या पर भी लागू होती है, जिनकी संख्या सफेद धब्बों वाली बकरियों से कहीं अधिक होगी। चित्तीदार बकरियों और भैरों के झुंड सभी सफेद भैरों या सभी गहरे रंग की बकरियों की तुलना में बहुत अधिक या अधिक बढ़ गए, जिससे लाबान क्रोधित हो गया। बकरियों पर सफेद धब्बे और सफेद धारियां यह दर्शाती हैं कि याकूब को बहुत ही स्पष्ट तरीके से लाबान का सबसे अच्छा हिस्सा मिला। यह लाबान का बहुत खुला अपमान था और यह जल्द ही एक बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि इससे उसे हर दिन घूरना पड़ेगा। अंत में याकूब ने लाबान की तुलना में कहीं बेहतर भेड़ बकरियां और गाय बैल उगाए और परिणाम स्वरूप याकूब बहुत समृद्ध हो गया। नौकर अपने मालिक से भी बराबर हो गया था। इस सब ने लाबान के कबीले और याकूब के बरहाते परिवार के बीच पहले से ही खतरनाक दरार को और बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परेशानी बिल्कुल सामने थी।